الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں. ہماری ریفرنس بک جو ہے وہ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی تفسیر کی جلد نمبر 3 ہے، اور اس میں ہم آیت جو پڑھ رہی ہیں آیت محاربہ یا خرابہ کے نام سے بھی یہ آیت مشہور ہے، اور یہ نمبر 33 بنتی ہے، یا 33 اور 34، 33 اینڈ 34. تو اس میں ہم خلاصہ تفسیر اور معارف و ترجمہ اور خلاصہ تفسیر تو پڑھ چکے تھے، معارف و مسائل جو ہے ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے. صفحہ نمبر 122 اصل جلد کے اس کے اوپر ہم تھے، اور جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئرڈ ہوگا تو وہ بھی اس کو بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اصل کتاب نہیں ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ جو آخر آیت میں فرمایا، لکھا لہم خزیم فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اس کے تحت انہوں نے فرمایا تھا کہ یعنی یہ سزائے شرعی جو دنیا میں ان پر جانا، سولی دیا جانا، یا ہاتھ اور پیر کا کاٹ دیا جانا، یا زمین سے بے دخل کر دیا جانا، تو یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا صرف ایک نمونہ ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیر پا ہے، یعنی لانگ لاسٹنگ ہے، لمبی ہے آخرت کی سزا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں، حدود و قصاص یا تعزیرات سے بآخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی. ہاں، سزا یافتہ شخص دل سے تو محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر توبہ کرنے والے کو بہت امیدیں بھی باندھتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. لیکن تو اسی طریقے سے اور بھی مقامات کے اوپر توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ امیدیں دلاتے ہیں. پہلے تو توبہ کرنے کے لیے امید دلاتے ہیں نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے، یغفر الذنوب جميعا، ٹھیک ہے، ہر گناہ کو جو ہے وہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اندر سزا دینا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے جو اصول اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں تو اس کے مطابق جو دنیا کی سزا ہوتی ہے وہ اسلامی نظام، اسلامی حکومت کے تحت جو ہے وہ دی جاتی ہے. لیکن اصل جو ہے نا، دین اسلام کی جو اصل ہے وہ بہرحال آخرت ہی ہے. دنیا میں سزا سے انسان کسی نہ کسی طریقے سے بچ بھی سکتا ہے، ठीक है, भाग जाए, फिरार हो जाए, या जो है वो हुक्काम को धोखा दे दे, झूठ का रास्ता इख्तियार कर ले, या कोई और इस किस्म का तरीका हो जाए, तो दुनिया में तो सजा से बचा जा सकता है किसी न किसी तरीके से, मुमकिन है। लेकिन आखिरत की सजा तो अल्लाह ताला ने बराहे रास्त देनी होती है, और इसी को हमारे दीन के अकीदे की एक बुनियाद करार दिया आखिरत। ठीक है, तो आखिरत क्या चीज है? आखिरत वो चीज है जो कि हमें आंखों से नजर नहीं आती और कानों से सुनाई नहीं देती, हम उसको सूंघ भी नहीं सकते, हम उसको चख भी नहीं सकते, और हम उसको फील भी नहीं कर सकते अपनी जिल्द के जरिए से। ठीक है, दुनिया की सजाओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सजा किसी को मिलते हुए देखें तो शायद उसकी चीखों की आवाज भी सुन सकते हो, राइट? और उसके बाद फिर शायद उसकी बॉडी को, जो उसका हाथ काटा गया या उसका सर कलम किया गया, हो सकता है उसको फिर हम टच भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसकी बॉडी को सूली के ऊपर चला हुआ चढ़ा हुआ छोड़ दिया गया तो वो सड़ना शुरू हो गई, तो हम उसको सूंघ भी सकते। तो ये दुनिया की सजाएं जो है ना, ये तो हम अपने हवासे खमसा से किसी न किसी शक्ल में परसीव कर सकते हैं ना, लेकिन आखिरत तो एक ऐसी चीज है कि जिसको कि हम अपने इन सेंसेस से परसीव कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते ना। ठीक है, उसके लिए तो मरना पड़ेगा, अगले जहान में जाना पड़ेगा, फिर बहुत अरसे के बाद जा करके जब रोजे महशर कायम होगा तब जाकर के वो चीज देख पाएंगे ना, उससे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आखिरत जो है ना, ये है असल में ईमान की बुनियाद, ये ईमान पर होता है। ठीक है, क्योंकि ईमान क्या चीज होती है? एतमाद। नबी ने जैसा बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात को मान लेना। तो ये दुनियावी सजाओं के बारे में तो ऐसा नहीं होता ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अगर तुम जो है वो ये करोगे तो तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। ठीक है, तो कल को जो है ना वो हमने किसी चोर का हाथ कटते हुए भी देख लिया तो हमें एतमाद हो गया, नबी अलैहिस्सलाम सच फरमा रहे थे कि चोर का जो है ना वो हाथ काटा जाएगा, देखो हमने हाथ काट करता हुआ देख भी लिया। ठीक है, तो भाई ये तो आपने देख लिया ना, देखी हुई चीज को तो ईमान नहीं कहते, ईमान तो अनदेखी चीज के ऊपर लाने को कहते हैं ना, एतमाद करने को कहते हैं ना। तो इसी वजह से हमारा दीन जो है ना, उसकी बुनियाद में से एक तो बुनियाद अल्लाह की वहदत है, अल्लाह, ठीक है, कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, जो कुछ हुआ है अल्लाह से हुआ है, अल्लाह ने किया है, और जो कुछ चल रहा है ये भी अल्लाह ताला कर रहा है। ठीक है, तौहीद, इसको तौहीद कहते हैं। तो ये तो सबसे पहली बुनियाद है, इसी वजह से कलमाए तौहीद ये भी दीन इस्लाम के पिलर्स में से सबसे पहला और सबसे अहम पिलर है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये सबसे पहला पिलर है। ठीक, लेकिन आखिरत का जो अकीदा है ना, ये भी बुनियादी तरीन पिलर्स में से एक पिलर है, यानी अनदेखी चीज के ऊपर नबी के कहने की वजह से एतमाद कर लेना। ठीक है, तो अब जो मुसलमान का नेक अमल होता है या मुसलमान का गुनाहों से बचने का अमल होता है, चाहे वो जल्बे मनफात करे यानी फायदेमंद चीज को एक्वायर करे, इसको जल्बे मनफात कहते हैं, फायदेमंद चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, एक्वायर कर लेना, या वो दफ़े मुजर्रत करे यानी नुकसान पहुंचाने वाली चीज से अपने आप को दूर करे या उस चीज को अपने से दूर करे, इसको दफ़े मुजर्रत कहते हैं। ये किस वजह से वो करता है? वो देखी हुई चीजों की वजह से नहीं, वो सुनी हुई चीजों की वजह से नहीं कि बस उसने सजा होते हुए देख ली या फायदा पहुंचते हुए देख लिया या सुन लिया तो इस वजह से वो ये काम कर रहा है, बल्कि अनदेखी हुई बुनियाद पर, अनदेखी हुई खबर की बुनियाद पर, नजर की बुनियाद पर नहीं, खबर की बुनियाद पर। ठीक, ये है आखिरत का अकीदा। तो अगर कोई मुसलमान आखिरत की वजह से अमल नहीं कर रहा बल्कि वो सिर्फ दुनिया के अंदर जो मौजूद चीजें हैं उनकी वजह से अमल कर रहा है, तो उसका ईमान या तो है ही नहीं, उसका ईमान या तो है ही नहीं या ना होने के बराबर है, बस ऐसे ही है जैसे कि नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर
आप अच्छी चीजों को एक्वायर कर सकते हैं ना, जब आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो इस चीज को करने से उनको फायदा हासिल हो रहा है, तो इस वजह से आप भी करना शुरू हो गए। आप नुकसान पहुंचाने वाली चीज से बच रहे हैं क्योंकि आपने दूसरों को देखा कि उनको नुकसान हो रहा था, इस वजह से आप बच गए। या ये कि प्रेशर है, पीयर प्रेशर, राइट, भाई सब करते हैं ये वाला काम, इस वजह से आप कर रहे हैं। भाई एक प्रेशर होता है इंसान के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उस वजह से आप काम करना शुरू हो जाते हैं या किसी नुकसानदेह चीज से बचना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एवरीवन एल्स इज ऑल्सो प्रिवेंटिंग इट। ठीक है, तो ये तो नजर की दुनिया हो गई ना, ये तो नजर की बुनियाद पर दीन हो गया। ठीक है, खबर की बुनियाद पर तो नहीं हुआ ना, नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद तो ना हुआ ना इसके अंदर शामिल, कुरान मजीद जो कि नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हम तक पहुंचा, तो उसके ऊपर तो एतमाद की वजह से आप जल्बे मनफात और रफे मुजरत नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसा जो फिर दीन होता है ना, जिसमें आप अच्छे अमाल कर तो रहे हैं और बुरे अमाल से बच तो रहे हैं, लेकिन एतमाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने मुशाहदे की बुनियाद पर, तो ये दीन वैसे ही हो गया कि जैसे कि आपने ईमान को स्किप करके डायरेक्ट अमलुस साले पर जंप लगा दी। हालांकि तरतीब क्या थी, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात व तवासाउ बिल हक व तवासाउ बिस सब्र। ठीक है, तो ईमान जो सबसे पहली चीज थी उसको आपने स्किप कर दिया, उसके ऊपर से आपने जंप मार दी और डायरेक्ट अमले साला की सालिया के ऊपर लैंड कर गए। ठीक है, तो इसको जैसे कि इन्होंने अंग्रेजी में भी लिख दिया कि डूइंग द राइट थिंग्स बट फॉर द रॉन्ग रीजंस, डूइंग द राइट थिंग्स बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए और भी ज्यादा ये एप्लीकेबल होता है क्योंकि निजाम खराब और सड़कें खराब, तो फलाना खराब, तो ढिमकाना खराब, ठीक है हर चीज ही खराब है। तो चलो ये अगर दीन आ गया ना हमारे मुल्क के अंदर, तो दीन में चूंकि हाथ काटा जाएगा और जो है वो सूली चढ़ा दिया जाएगा मुजरिमों को, और जो है वो करप्शन के ऊपर ये सजा मिल जाएगी, तो इस वजह से ना हमारा निजाम ठीक हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का निजाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। राइट, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो है वो उसके पास दुनियावी वसायल प्रॉपरली इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके पासपोर्ट को भी इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम जिस मुल्क में जाना चाहेंगे हमारा वीजा डिनाई नहीं होगा, राइट, हमारा वीजा एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में नहीं चली जाएगी बल्कि वो फॉरन से अप्रूव हो जाएगी, बल्कि हो सकता है कि वीजा फ्री एंट्री भी हमें मिल जाए। तो दीन का रास्ता तो बड़ा फायदे का रास्ता है भाई, इस तरीके से तो हमें वीजा फ्री एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलो भाई दीन दीन आ जाए किसी तरीके से मुल्क के अंदर, दीनी निजाम आ जाए भाई किसी तरीके से मुल्क के अंदर। ठीक है, तो ये जो दीन है ना इसका ईमान से ताल्लुक नहीं है, इसका आखिरत से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये दीन जो है ना ये अपना बनाया हुआ दीन कहलाएगा, कि अल्लाह और उसके रसूल का और कुरान का दीन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये वो वाला दीन नहीं है जो कि मरने के बाद वाली जिंदगी में सक्सेस को गारंटी करता है ना, ये वो वाला दीन नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सक्सेस का एक बहाना है और उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो ये बुनियाद में से है। अब अगर हम इस बुनियाद को समझ लेते हैं तो फिर हमारा फायदा है, अगर हम नहीं समझते, नहीं मानते और अपनी सोच को वही दुनिया के अंदर ही मुकैद रखते हैं कि भाई इससे ये दुनिया का फायदा हो जाएगा, उससे वो दुनिया का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे बच्चे मेरा हुक्म मानना शुरू हो जाएंगे, अगर मेरे घर में दीन आ गया तो मेरे बच्चे मेरा हुक्म मानना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दीन है ना ये अपना दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाले में दो दीनों का जिक्र है ना, एक तुम्हारा दीन है एक मेरा दीन है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन नहीं है। ठीक है, तो ये दोहराई और ये याद दहानी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसके आगे लिखते हैं कि दूसरी आयत, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन कबली, ठीक है, यानी इससे पहले, मिन कबली में जो हुम हो या मिन कबली ही जो है ना वो छुपा हुआ होता है, यानी इससे पहले, अन तकदिरु अलैहिम के तुम उन पर कुदरत पालो, यानी उनको गिरफ्तार कर लो, उनको पकड़ दो। ठीक है, तो अगर वो तौबा कर लें तो फिर उनको ये वाली सजा नहीं दी जाएगी। तो इसमें एक इस्तेसना जिक्र किया गया है, ठीक है, एग्जेम्पशन या एक्सेप्शन जिक्र की गई है, वो ये है कि डाकू और बागी अगर हुकूमत के घेरे में आने और उन पर काबू पाने से पहले पहले, जबकि उनकी कुव्वत और ताकत बहाल है, इस हालत में अगर तौबा करके रहजनी से खुद ही बाज आ जाए, तो डाके की ये हद शरई उनसे साकित हो जाएगी। ठीक है, यानी उनसे खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये इस्तेसना आम कानून हुदूद से मुख्तलिफ है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जराइम, चोरी, जिना वगैरह में जुर्म करने और काजी की अदालत में जुर्म साबित हो जाने के बाद अगर मुजरिम सच्चे दिल से तौबा भी करे, तो गो इस तौबा से आखिरत की सजा माफ हो जाएगी, मगर दुनिया में हद शरई माफ नहीं होगी। जैसे कि चंद आयतों के बाद चोरी की सजा के तहत में इसका तफसीनी बयान आएगा। ठीक है, तो अभी सूरह मायदा ही कि आप अगली चंद आयात के अंदर चोरी का सारा का सारा तफसीली मामला मौजूद है, तो वहां हम ये पढ़ लेंगे। क्या मतलब कि किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, फिर उसने जो है ना वो तौबा कर ली, अल्लाह तौबा, मेरी तौबा, मैं अब चोरी नहीं करूंगा, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई, सबूत मिल गए काजी को, ठीक है, और काजी ने जो है ना वो यानी हुकूमत पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, फिर मुकदमा चला, मुकदमे के अंदर उसकी चोरी कंफर्म हो गई, सब कुछ, अब उसको सजा मिलेगी नहीं कहा जाएगा, ये नहीं होगा कि भाई इसने गिरफ्तार होने से पहले तौबा कर ली थी तो अब हम इसको सजा नहीं दे सकते, नहीं, ऐसा नहीं होगा, चोरी के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कत्ल के साथ भी ऐसा नहीं होगा, बस कत्ल किया है, प्रूव हो गया, पकड़ा गया, तो अब उसके ऊपर कसास जारी की जाएगी, ठीक है। डाके के साथ ऐसा नहीं है, क्यों भाई? हालांकि ये तो ज्यादा संगीन जुर्म है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हजरत ने एक और जुमला लिखा है ना कि उनकी कुव्वत और ताकत बहाल है, यानी डाकुओं की कुव्वत और ताकत बहाल थी, उनके पास थी, इस हाल में उन्होंने तौबा करी है, ठीक है। क्या मतलब के डाकू क्वालिफाई होने के लिए, यानी टू बी क्वालिफाइड एज अ डाकू, यू हैव टू हैव ताकत, ठीक है, बाकायदा असलहा होना चाहिए आपके पास, चाहे वो तलवार की शक्ल का असलहा हो, खंजर, चाकू, छुरा या बंदूक, तोप, राइट, राइफल, पिस्टल, इस किस्म का असलहा हो, लेकिन आपके पास असलहा होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि बस मेरे मसल ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो अब अपने मसल्स की जोर पर जो है ना वो हम लोगों को लूट रहे हैं, अपनी ताकत यानी जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर आप लोगों को लूट रहे हैं, तो यू डोंट क्वालिफाई एज अ डाकू, ठीक है, यू डोंट क्वालिफाई एज अ डाकू, तो डाका उसी वक्त कहलाएगा जब आपके पास हथियार मौजूद हो, ठीक है, तो डाकुओं को ऐसी कुव्वत और गलबा हासिल हो कि जिनको वो लूट रहे हैं ना वो उनका मुकाबला नहीं कर सके, वरना फिजिकली तो भाई हो सकता है जिनको आप लूटने जा रहे हैं वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग निकल आए, या चलो अगर स्ट्रांग नहीं भी हैं, उनको कराटे कराटे आती हो, तो वो कराटे वाला तो कमजोर होने के बावजूद जो है ना वो बंदे को गिरा देता है, एक 360 के जो है वो किक मारेगा और ये मोटे साहब जो है ना ये अपने जमीन पर पड़े हुए होंगे, ठीक है, तो ये जो मोटे साहब है ना, क्या बॉडी बिल्डर साहब है, ये डाकू नहीं कहलाएंगे, बगैर असले के निकल पड़े थे किसी को लूटने के लिए, ठीक है, तो ये डाकू की डेफिनेशन है कि उसके पास असलहा हो, ठीक है, हथियार हो उसके पास। अच्छा, तो इस हालत में उसने तौबा, क्या लिखा है इन्होंने कि व्हाट इफ द डाकू डिड तौबा, हाउएवर आफ्टर तौबा इट वाज प्रूवन दैट ही मर्डर्ड समवन, विल ही स्टिल बी फॉरगिवन, वो आगे आ रही है, आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो काजी की अदालत में जुर्म साबित होने के बाद अगर मुजरिम सच्चे दिल से तौबा भी करे, तो गो उस तौबा से आखिरत की सजा माफ हो जाए, यानी चोरी वोरी के अंदर जो है ना उसकी सजा माफ हो जाती है, मगर दुनिया में हद शरई माफ नहीं होगी, जैसा कि चंद आयतों के बाद चोरी की सजा के तहत में चोरी की गया। हाँ, चोरी की सजा के तहत में इसका तफसीली बयान आएगा। डाकू के साथ जमात भी होती है, हाँ, तो डाकू, एज अ डाकू क्वालिफाई होने के लिए जमात का भी होना, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन, ये शायद हम पिछली क्लास में पढ़ा भी था, कहीं पीछे लिखा हुआ था उसने कि जमात का भी होना, कहीं किसी को याद होगा कि वो कहाँ था तो डाउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहर आप तो क्वालिफाई होने के लिए ना, यानी ये चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, यानी होगा था ना, आप बदमाश, आप चाहते हैं कि लोग आपको बदमाश माने, लेकिन आपको तो देख करके उल्टा लोगों को तरस आता है, तो अब आप कितना ही चाह रहे हैं कि लोग मुझे बदमाश समझना शुरू हो जाए, लेकिन आप बदमाश के तौर पे क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो उसी तरह डाके का भी यही मामला है। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि हिकमत इस इस्तिसना की है, यानी ये क्यों ऐसा इस्तिसना अल्लाह ताला ने दिया है, तो उसकी हिकमत ये है कि एक तरफ डाकुओं की सजा में ये शिद्दत इख्तियार की गई है कि पूरी जमात में किसी एक से भी जुर्म का सुदूर हो तो सजा पूरी जमात को दी जाती है, इसलिए दूसरी तरफ इस इस्तिस्ना के जरिए मामले को हल्का कर दिया गया कि तौबा कर लें तो सजाए दुनिया भी माफ हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक सियासी मसलहत भी है, ठीक है, यानी तौबा का मामला अल्लाह ताला ने ऐसे, यानी एक इंसेंटिव दिया, बहुत बड़ा इंसेंटिव, ठीक है, कि भाई तुम तौबा कर लो तो तुम्हारी आखिरत की तो सजा हर किस्म की माफ हो जाती है ना, चाहे तुमने 99 कत्ल किए हों, लेकिन हदीसे मुबारका के अंदर जो उस 99 लोगों के कातिल का जिक्र है ना, उसकी तौबा कबूल हो गई थी ना, हत्ता के तुमने अपनी 70 बेटियों को जिंदा दरगोर किया हो, 70 बेटियों को जिंदा दरगोर किया हो, तो तौबा करने के ऊपर वो भी माफ हो जाती है ना भाई, इससे ज्यादा और क्या इंसान तसव्वुर कर सकता है, ठीक है। तो आखिरत की सजा का मसला नहीं है, वो तो तौबा से माफ हो जाती है, लेकिन दुनिया की सजा डाकू के लिए माफ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई ना, डाकू डाकू को इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसको यानी उभारा जा रहा है, भाई तौबा कर लो, तौबा कर लो, ठीक है, दुनिया भी बच जाएगी तुम्हारी। लेकिन उसके अंदर एक सियासी मसलहत भी है, वो क्या कि एक ताकतवर जमात पर हर वक्त काबू पाना आसान नहीं होता, इसलिए उनके वास्ते तरगीब का दरवाजा खुला रखा गया कि वो तौबा की तरफ मायल हो जाए, कि वो तौबा की तरफ मायल हो जाए, क्योंकि ये जो जब जब एक जमात खड़ी हो जाती है ना, ठीक है, और फिर वो हथियार उठा लेती है, तो अब ये गुरेला वॉरफेयर भी तो उसको कहते हैं ना आजकल के जमाने में, वो कौन सी होती है, वो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसका नाम रख दिया गया है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है, इसको गुरेला वॉरफेयर कहते हैं ना। अब गुरेला वॉरफेयर का हमें अच्छी तरीके से पता है, हमारे तो मुल्क के बराबर में ये चल चुकी है, कितनी बड़ी सुपर पावर्स, यूएसएसआर कितना बड़ा मुल्क था, यानी न्यूक्लियर पावर भी है और स्पेस के भी उसके पास जो है वो सारी चीजें मौजूद हैं और क्या क्या कुछ उसके पास मौजूद नहीं था, लेकिन गुरेला वॉरफेयर के सामने उसकी भी बस हो गई। उससे भी पहले वियतनाम के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसएसआर से भी बढ़ करके टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा से बढ़ करके ही रहा है वो यूएसएसआर से, लेकिन वियतनाम के अंदर उसके साथ क्या हशर होता, ठीक है। तो ये आसान काम नहीं होता, ये तो बेवकूफी होते हैं कि जो कि ना जिद पे आ जाते हैं, ठीक है, वो भी वो उधर से वो गुरेला वॉरफेयर कर रहे हैं, यानी एक जमात जो है वो हथियार उठा करके आपके खिलाफ लड़ाई पे आमादा हो चुकी है, और ये जो है ना वो ब्रूट फोर्स के जरिए से उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो फसाद बढ़ता है और मसला हल नहीं होता, ठीक है। तो ये फिर बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं जो कि इस तरह की कोशिश करते रहते हैं फिर भी, लेकिन अब बेवकूफों से दुनिया खाली तो नहीं होती ना, वो तो हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, तो ये दुनिया तो एक तरीके से एक है ना, दुनिया अल्लाह वालों के दम से कायम है, उसी तरह से ये दुनिया जो है ना ये बेवकूफों के दम से भी कायम है, ठीक है। तो ये दोनों साइड पे चलता है मामला, एक तो अल्लाह वालों के दम से कायम है, वरना कयामत आ जाए, जब तक अल्लाह 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 दुनिया में किया जाता रहेगा, कयामत आगे पुश होती रहेगी, पुश होती रहेगी, पुश होती रहेगी, हत्ता कि जब आखिरी बंदा आखिरी दफा अल्लाह अल्लाह करेगा और फिर उसके बाद कोई अल्लाह अल्लाह नहीं करेगा, तो फिर 40 साल के बाद कयामत आ जाएगी। तो गोया कि अल्लाह के जिक्र से दुनिया कायम है, तो उसी तरह से ना समझ दूसरी साइड पे भी चलती है ना, दुनिया में तो दोनों चीजें चलती है ना, हक और बातिल साथ साथ। तो उसी साइड से ना समझ लें कि दुनिया के अंदर जितने ये तमाशे चल रहे होते हैं ना उल्टे सीधे, ये बेवकूफों के दम से चल रहे होते हैं। अगर ये बेवकूफ खत्म हो जाए तो फिर तो दुनिया की जरूरत ही खत्म हो जाए, फिर तो जो है वो जन्नत बन जाए ये दुनिया। ठीक है, तो दुनिया का रहना भी ना इनके दम बदम से है। तो ये है हमारे यहाँ तो थोड़ा माशाल्लाह ज्यादा ही नजर आते हैं, अजीब और गरीब किस्म के कर रहे होते हैं काम। बस अल्लाह रहम करे इनके ऊपर, हम सबके ऊपर। चले आगे चलते हैं कि नीज इसमें ये भी मसलहत है, तो कत्ले नफ्स एक इंतहाई सजा है। ठीक है, यानी एक तो सियासी मसलहत हो गई कि भाई उनको एक यानी तरवीब का दरवाजा खोला रखा ना, तो ये भी एक गोया के दुनियावी इंसेंटिव हो गया। इससे पहले वाला जो था वो उखरवी इंसेंटिव था, मुसलमान डाकू है, मुसलमान भी तो डाका देने से वो काफिर तो नहीं हो जाता ना। हम कोई मुतजिला तो है नहीं कि गुनाह कबीरा करने से जो है वो बंदे को काफिर बना दे। तो डाका डालने वाला काफिर नहीं होता, वो मुसलमान ही है। तो मुसलमान होगा तो आखिरत पर ईमान उसका होगा, वरना उसके बगैर वो मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा जैसा कोई थोड़ी मामला था कि हम आखिरत पर ईमान नहीं रखते फिर भी मुसलमान है। ये तो आजकल क्या है, ये माशाल्लाह लॉर्ड मुकाले के तालीमी निजाम के बाद ऐसे मुसलमान पैदा हुए हैं जो कि आखिरत पर ईमान के बगैर भी मुसलमान है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना, जरा सोचें इस जुमले के ऊपर कि पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन आज ऐसा होता है कि कुरान पर ईमान के बगैर भी मुसलमान, आखरत पर ईमान के बगैर भी मुसलमान। ये एक अजीब किस्म का इस्लाम है जिसकी हवाएं दुनिया में चल चुकी हैं आजकल, राइट। इल्ला माशाल्लाह, माशाल्लाह वाकई मुसलमान भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया मुसलमान से खाली हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डाका डालने वाला वो मुसलमान होता था क्योंकि उसका अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान होता था। ठीक है, हाँ, ये इन्होंने अच्छा पॉइंट लिख दिया यहाँ पे कि डाके को गुनाह ना समझने वाला ये काफिर है। वो काफिर है जो कि डाके को गुनाह नहीं समझता क्योंकि वो कुरान मजीद का इनकार कर रहा है। ठीक है, तो गुनाह समझ करके डाका, यानी गुनाह समझते हुए डाका डालने वाला काफिर नहीं। अच्छा, तो एक ताकतवर जमात पर हर वक्त काबू पाना आसान नहीं होता, इसलिए उनके पास से तरदीब का दरवाजा खुला रखा गया। तो ये दुनियावी इंसेंटिव है और ये बड़ा यानी सियासी हिकमत अमली, वो एक अल्लाह ताला मुसलमान को अता फरमा रहे हैं, मुसलमान हुकूमत को अता फरमा रहे हैं अपने कलाम के वास्ते से। ठीक है, अच्छा, नीज इसमें ये भी, यानी एक मजीद मसलहत ये भी है कि कत्ले नफ्स एक इंतहाई सजा है। ठीक है, यानी एक बंदे का मारना ये एक्सट्रीम किस्म की यानी चीज है ना। ठीक है, इसमें कानून इस्लाम का रुख ये है कि इसका वकूफ कम से कम, यानी बंदा मारना जो है ना ये जितना अवॉइड हो सकता है उतना उसको अवॉइड किया। ठीक है, और डाके की सूरत में एक जमात का कत्ल लाजम आता है। ठीक है ना, हालांकि सबने जो है वो राहगीरों को कत्ल ना किया हो, सिर्फ दो तीन ने कत्ल किया हो, किसी एक ने भी कत्ल किया हो, लेकिन पूरी जमात को सजा दी जाएगी कत्ल की। ठीक है, तो एक जमात का कत्ल लाजिम आता है, इसलिए तरगीबी पहलू से उनको इस्लाह की दावत भी साथ साथ जारी रखी गई है। ठीक है, देखें दीन इस्लाम का अमन पसंद होना सुना तो होगा आपने, ठीक है, लेकिन कैसे, तो देखें ये उसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो मिसाल है कि ऐसे फसाद फैलाने वालों के लिए भी, यानी ये प्रेफर्ड नहीं है कि भाई पूरे ना जमात को मार दिया जाए, तो इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, एक आखिरत का इंसेंटिव, एक बहुत बड़ा दुनिया का इंसेंटिव। तो इसी इसी का असर था, इसी इंसेंटिव का असर था कि अली असदी जो मदीना तैयबा के करीब में एक जत्था जमा करके आने जाने वालों पर डाका डालता था, एक रोज काफिले में किसी कारी की जुबान से, माशाल्लाह क्या डाकू होते थे उस जमाने में, आजकल के भी वैसे हैं, ऐसे कुछ हमारे यहाँ भी हैं जो कि किसी ने वाकया सुनाया था कि वो अगवा जो करते हैं ना, तो उन्होंने किसी बंदे को अगवा किया और बैठे हुए थे अपनी जगह पर, उस बंदे को भी बांध के रखा हुआ था, इतने में अजान हो गई। तो अजान हो गई तो सबने जो है वो नमाज की तैयारी शुरू कर दी। तो उस बंदे ने कहा कि यार एक तरफ से तुम मुझे अगवा करके लाए हो और तावान का मुतालबा कर रहे हो, इतना भारी तावान, और दूसरी तरफ तो जो है तुम नमाज पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा भाई ये हमारा कारोबार है, ये हमारा दीन है, ठीक है, तो दीन में नमाज पढ़ना वो फर्ज है, उधर जो है ना वो हमारा कारोबार है ये यानी अगवा करके तावान वसूल करना, ये तो भाई हमारा हमारा रोजी का मामला है, ठीक है। तो आजकल भी माशाल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नमाज नहीं छोड़ते, बेशक वो डाका डालते हो या अगवा करते हो। तो उस वक्त भी ऐसे ही था कि भाई डाके डाकुओं के दरमियान कारी साहब भी मौजूद थे और कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो डिनाई नहीं करते थे ना कुरान मजीद का, इनकार नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने तो लॉर्ड मूकाले के तालीमी निज़ाम में तालीम हासिल नहीं करी थी, वो तो हमने हासिल करी है ना, तो इस वजह से हमारे चंद एक जो एग्जम्पशंस हैं उनके अलावा बाकी हम सबका मामला ऐसा है कि हम एग्री नहीं करते कुरान मजीद से, अनफॉर्चुनेटली। तो बहरहाल तो कारी साहब की जुबान से आए तो उसके कान में पड़ गई, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ठीक है, कि ए मेरे बंदे वो जिसने के ए मेरे बंदों वो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, इसराफ किया, यानी इतना गुनाह किया, इतना गुनाह किया गोया कि गुनाहों में इसराफ कर डाला, फजूल खर्ची कर डाली गुनाहों के अंदर, यानी इतना गुनाह किया, ठीक है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। तो सुन करके वो कारी साहब के पास पहुंचे और दोबारा पढ़ने की दरख्वास्त की, दूसरी मरतबा आयत सुनते ही अपनी तलवार मैदान में दाखिल की और रहजनी से तौबा करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा पर मरवान बिन हकम हाकिम थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु उनका हाथ पकड़कर अमीरे मदीना के पास ले गए, यानी पहुंचे भी कहां, सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के पास, ठीक है। तो उस वक्त जो है मरवान बिन हकम हाकिम थे, ये बनू उमैया के खानदान के थे और बड़ी मशहूर शख्सियत है, ठीक है। इनके बारे में बहुत मुख्तलिफ चीजें मशहूर हैं, जिनमें बहुत ही बुरे इंसान से लेकर के बहुत ही अच्छे इंसान तक पूरा स्पेक्ट्रम है, और खानदान बनू उमैया के बारे में उमूमन ऐसा ही मामला है, ठीक है, कि या तो यानी कुछ तो उनको बहुत बुरा कहते हैं और कुछ जो है ना वो कंसिडरेबली अच्छा भी कहते हैं, ठीक है। अब उसकी क्या रीजंस हैं वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन जो हमारे कम से कम हमारे जो मुहक्कक दारुल इफ्ता हैं तो हमने वहां से भी इसको कंफर्म किया, तो मरवान बिन हकम के बारे में फिर तीन ओपिनियंस लिखे हुए हैं हमारे उलमा के, ठीक है, जिनको हम अपना बड़ा समझते हैं, कि या तो ये सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल, ठीक है, नंबर वन ओपिनियन सहाबी रसूल। नंबर टू ओपिनियन कि ये सहाबी थे लेकिन उस तरह के जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को सुना नहीं, तो ये सहाबा की एक दूसरी किस्म भी किताबों के अंदर लिखी है कि जिनसे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की आवाज नहीं सुनी, ठीक है, आवाज सुनने वाला वो सहाबी होता है ना, ठीक है, ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी, क्योंकि अगर अंधे थे तो देख तो नहीं सकते थे। हाँ बहरे सहाबी का जो है वो कहीं पर जिक्र नहीं आता कि वो सहाबी थे लेकिन बहरे थे, तो आवाज सुनने को फिर सहाबी का मेयार बना दिया गया, तो इन्होंने आवाज नहीं सुनी थी, तो इस वजह से ना ये उस मेन कैटेगरी ऑफ सहाबा में नहीं आते। और तीसरी ओपिनियन क्या लिखी है कि ये ताबेईन में से थे, ठीक है, और इनके अलावा पढ़ा कि बहुत ज्यादा जहीन, बहुत ज्यादा मुहद्दिस, बहुत ज्यादा इल्म वाले और बहुत ज्यादा हदीसों का इल्म रखने वाले थे। बहरहाल अब जो खानदान बनी उमैया के दुश्मन हैं तो उन्होंने फिर इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। बहरहाल जो भी थे यहाँ पर उसका मौका भी नहीं था, हमने बात कर दी जमीनी तौर पर। तो इस वक्त मदीना मुनव्वरा पर मरवान बिन हकम हाकिम थे, तो हजरत अबू हुरैरा रहता है उनका हाथ पकड़कर अमीर मदीना के पास ले गए और कुरान की आयत मजकूरा यानी आयत मुहारबा पढ़कर फरमाया कि आप इसको कोई सजा नहीं दे सकते, ठीक है। तो हुकूमत भी उनके फसाद और रहजनी से आजिज हो रही थी, सबको खुशी हुई, ठीक है। अब जब अल्लाह का हुक्म मौजूद है कि भाई तौबा करना करने यानी गिरफ्तार होने से पहले तौबा कर ली तो अब सजा नहीं दी जाएगी, तो अब मरवान बिन हकम अपनी तरफ से तो नहीं फैसला सादर कर सकते थे ना, ठीक है। तो सबने यानी सुख का सांस लिया कि हाँ भाई डाकुओं के सरदार ने तौबा कर ली, इसके साथ इंशाल्लाह इसका पूरा ग्रोह भी जो है वो भी तायब हो चुका होगा, तो जान छूटी, खत्म हुआ। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और बहुत अहम नुक्ता ये भी बयान करना चाह रहे थे कि हजरत ने यहां पर ना जो ये एक बजाहिर बड़ी मुश्किल से समझ में आने वाली बात कि डाका जैसा सख्त जुर्म जिसके इतनी बुराइयां हम पीछे पड़ चुके हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स क्यों रखे। ठीक है, तो वो उखरवी इंसेंटिव और दुनियावी इंसेंटिव दोनों हजरत ने बयान किए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या है कि ये जो अकली तौर पर बात को समझाना होता है ना अगले बंदे को कि भाई इसकी ये वजह है, तो इसका फायदा क्या होता है कि जो ना मानने वाला होता है ना, या जिसको शक होता है, ना मानने वाला और शक में क्या फर्क होता है कि ना मानने वाला ऊपर से जो जुबान से इनकार करता है उसको ना मानने वाला कह दिया जाता है, और जो जुबान से इनकार नहीं करता लेकिन दिल में उसके जो है ना वो इनकार ही होता है, ऐसे बंदे को शक करने वाला कहा जाता है। ठीक है, वरना इनकार तो दोनों ही कर रहे होते हैं, एक जाहिरी तौर पर इनकार कर रहा होता है, एक जो है वो बातनी तौर पर इनकार कर रहा होता है। तो ऐसे बंदों को जो है ना वो माइल करने की, दीन की तरफ माइल करने की ये एक कोशिश होती, एक अटेम्प्ट होता है कि उनका दिल जो है ना वो दीन की तरफ माइल हो जाए। इस वजह से ये अकली दलाइल जो है ना ये अपनी जगह पर एक हैसियत रखते हैं, इनको बिल्कुल भी जो है ना वो हम यानी बेकार करार नहीं दे सकते। ये और बात है कि जो मानने वाले होते हैं उनको अकली दलाइल की जरूरत नहीं होती, वो तो उसूली तौर पर अपनी अकल इस्तेमाल करके मान चुके हो उसूलियात में। जैसे पीछे भी सूरह अनआम की जो आयत की तफसीर चल रही है, जो मैं के दरस में भी बात हो चुकी है इसके ऊपर चंद हफ्ता पहले, कि उसूलियात में अकली दलाइल जरूरी होते हैं, उसूलियात यानी बिल्कुल बुनियादी चीजों जो होती है ना, ठीक है, उनमें तो अकली दलाइल जरूरी होती है, लेकिन फुरुआत के अंदर अकली दलाइल की जरूरत भी नहीं होती और उसमें पढ़ना अक्सर नुकसानदेह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मानने वाले होते हैं वो मानने वाले बने कैसे, वो उसूली बात को अकल की रोशनी में मान लेते हैं, अकल की रोशनी में उसूल को मान लेते हैं, इस तरह से वो मानने वाले बन जाते हैं यानी मोमिन। ठीक है, तो उनको तो फिर फुरुआत के अंदर जो है ना वो अकली दलाइल की जरूरत नहीं होती। ये क्या है, ये फुरुआत में से है कि भाई डाका डालने वाले को जब इतनी सख्त सजा देनी समझ में आती है तो फिर उसको इतने इंसेंटिव क्यों दिए जा रहे हैं, ये फुरुआत है। ये जैसे कि नमाज पढ़ने का तरीका ऐसे क्यों है वैसे क्यों नहीं, ये फुरुआत है भाई। ठीक है, तो जो मानने वाले लोग होते हैं ना उनको फुरुआत के अंदर अकली दलाइल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो नहीं मानने वाले होते हैं ना उनको माइल करने के लिए अगर फुरुआत के लिए भी अकली दलाइल दिए जाएं इस उम्मीद पर कि उनका दिल थोड़ा इस तरफ माइल हो जाएगा, इट विल ब्रेक द आइस, इट विल ओपन अप देयर माइंड, या इट विल एटलीस्ट अट्रैक्ट देयर अटेंशन। ठीक है ना, उनकी अटेंशन इस तरफ जो है ना वो कम से कम रागब करने के लिए, तो फिर ठीक है ये। ठीक है, इसी वजह से हजरत ने यहां पर जो अकली दलाइल दिए हैं ये इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है। ठीक है, आपने भी खुद भी देखा होगा, हो सकता है आपका अपना भी तजुर्बा यही हुआ हो कि जहां आप बात सुनते हैं और वहां पर आपको बात समझ में भी आ रही होती है ना तो फिर आप और सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको बात समझ नहीं आ रही हो ना तो आप एक दफा तो किसी ना किसी तरीके से सुन लेंगे, दूसरी दफा आप नहीं सुनने के लिए आएंगे, तीसरी दफा आप नहीं सुनने के लिए आएंगे, अगर दूसरी दफा भी सुन लिया तो तीसरी दफा आप नहीं आएंगे। व्हाई डू यू कीप कमिंग टू हेयर समवन और हेयर समथिंग, क्योंकि उनकी बात आपको समझ में आ रही है। जबकि इसके बरक्स आपने ये भी तजुर्बा किया होगा कि आप अपने खानदान में किसी और को कह रहे हैं कि भाई आप भी सुने ना, आप भी सुने ना, बड़ी अच्छा है, बड़ा अच्छे से समझाते हैं और मुझे इनकी बात समझ में आती है, आप भी सुने, लेकिन वो शख्स कहे यार मुझे तो समझ में नहीं आती इनकी बात, तो आप देख लें, आप उनके मिन्नतें भी कर लेंगे ना, वो दोबारा आकर के नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको बात ही समझ में नहीं आ रही, वो नहीं दोबारा आकर के सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी, कल कल भी हम आप में से एक हमें बता रहे थे, हमने बहुत कोशिश करी कि वो आप सुने, आपको सुने, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, आपके जो शेख है ना, उनकी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, तो जब उन्होंने ये फैसला सादर कर दिया कि उनकी तो बात ही मुझे समझ में नहीं आती ना, तो उसके बाद उन्होंने नहीं सुन करके दिया। ठीक है, अब वो उनका जो भी हुआ उनके साथ उसके बाद, वो तो आप फिर उन्हीं से पूछिएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, लेकिन बहरहाल उनको नहीं समझ में आ रही, उन्होंने नहीं सुना। तो अब ये है कि भाई हम कोशिश अपनी जारी रखते हैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते रहते हैं, या ये कि किसी को क्लास में बात समझ में ना आ रही हो तो हम कहते हैं कि भाई आप उनको लेकर के आ जाएं आमने सामने, और खवातीन को तो वैसे भी पर्दे के पीछे बिठाते हैं। ठीक है, और मर्द होते हैं तो वैसे आमने सामने बैठते हैं, तो वन टू वन कॉन्वर्सेशन में फिर हम कोशिश कर लेंगे कि उनको बात समझ में आ जाए। हो सकता है वन टू वन डायरेक्ट मुलाकात के अंदर बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमारी मेहनत हमारी कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो आवे आवे, ठीक है, ना कबूल करे तो हम मारे गए फिर उसके बाद। ठीक है, लेकिन ये अपनी कोशिश है, लेकिन कोशिश सारी की सारी क्या है, बात समझ में आ जाए। जिसको आप खिताब कर रहे हैं, जिसको आप यानी माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बात समझ में आ जाए, ये होनी चाहिए कोशिश, और यही हमारी जिम्मेदारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, नबियों ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, कि हमारे ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय बात का खोल खोल करके बयान कर देना। सिर्फ बयान कर देना भी नहीं, बल्कि समझा समझा करके बयान कर देना। तो नबियों के जिम्मे ये काम है, तो भाई नबी की उम्मत के भी तो जिम्मे यही काम है ना। ठीक है, तो भाई हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह भी यहाँ पे इसी मकसद से बात लिख रहे हैं। बाकी है कि थोड़ा सा रह गया, माजरत के साथ 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो फरमाते हैं कि इसी तरह हजरत अली करमल्लाह वजहू के जमाने में हारिसा बिन बदर बगावत करके निकल गया और कत्ल व गारत गरी को पेशा बना लिया, मगर फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी और तौबा करके वापस आया, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने उस पर हद शरई जारी नहीं फरमाई। यहां ये बात काबिल याददाश्त है कि हद शरई के माफ हो जाने से ये लाजिम नहीं आता कि हुकूकुल इबाद जिनको उसने जाया किया है वो भी माफ हो जाए, बल्कि अगर किसी का माल लिया है और वो मौजूद है, यानी वो बंदा जिसका इसने माल लिया था वो मौजूद है, तो उसका वापस करना जरूरी है, और किसी को कत्ल किया है या जख्मी किया है तो उसका किसास भी इस पर लाजिम है। ठीक है, यानी कत्ल का किसास, फिर वो यानी डाके का जुर्म खत्म हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल कत्ल बन जाएगा। ठीक है, तो कत्ल का फिर मामला किसास के जरिए से तय हो जाता है। ठीक है, चाहे वो जो है वो दियत ले लें, चाहे वो जो है वो कत्ल करवाएं इसको वारिसीन, लेकिन यानी फिर इसकी जो है ना वो जिन्स चेंज हो जाती है इसके गुनाह की। ठीक है, तो और किसी को कत्ल किया जख्मी किया तो उसका कसास इस पर लाजिम है। अलबत्ता चूंकि कसास हक्कुल अब्द है, तो औलियाए मक्तूल या साहिबे हक के माफ करने से माफ हो जाएगा, और जो कोई माली नुकसान किसी को पहुंचाया है उसका जमान अदा करना या उससे माफ कराना लाजम है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर फुकहा का यही मसलक है। ठीक है, यानी उन्होंने हदीसों से और सहाबा कराम के अकवाल से यही चीज जो है ना वो साबित समझी है, और यही उनका मसलक है कि ऐसे ही है। और अगर गौर किया जाए तो ये बात यूं भी जाहिर है कि हुकूकुल इबाद से खुलासी हासिल करना खुद तौबा का एक जुज है, बिदून इसके तो यही तौबा ही मुकम्मल नहीं होती। इसलिए किसी डाकू को तायब उसी वक्त माना जाएगा जब वो हुकूकुल इबाद को अदा या मुआफ करवा ले। ठीक है, क्या लिखा आपने, शायद यहाँ चोरी के माल का मौजूद होना भी जरूरी, यानी जो माल उसने चोरी किया था उसका मौजूद होना भी जरूरी है, कि होगा तब जो है वो उसमें से उनको वापस करेगा। हाँ, ये तफसीलात होंगी यकीनन, इतना मैं पढ़ भी नहीं सका, मेरे जहन में भी नहीं है कि डाका डालने में फिर ये भी माल लूटा जख्मी किया तो सजाओं वगैरह का सारा जिक्र है। हाँ तो उसूल की बात तो आजत ने यहाँ पे लिख दी ना, काफी क्लियर है। बाकी ये कि स्पेसिफिक केसेस के अंदर फिर जाहिर है फिर ये मामला जो है वो काजी फुजा जो होते हैं वो हमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो फिर वो सारी तफसीलात जानते हैं उसके मुताबिक फैसला करेंगे। हम जैसे होंगे तो बस ये उसूल ही पढ़ लिया सुन लिया, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो इतना इंशाल्लाह हमारे लिए काफी होगा। बाकी फिका की किताबों के अंदर की सारी तफसीलात मौजूद हैं। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे हम आज क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।